نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم تیسرے پارے کے مضامین چیدے چیدے مضامین کا جائزہ لیں گے یہ سورہ پارہ جب شروع ہوتا ہے تو ابتدا ہی میں قرآن پاک کی ایک عظیم ترین آیت آیت الکرسی جو ہے موجود ہے اس میں شروع ابتدا ہی کے اندر اور اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں ہم نے شروع میں بھی اس کے بارے میں ایک جو ہے وہ جب سورہ بقرہ کا ہم نے جو آغاز کیا تھا اس کے تعارف کے اندر اس بات کے حدیث کو ہم نے پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ سیدت و آیہ القرآن سیدت و آیہ القرآن یہ جو قرآن کی آیات کی سردار آیت ہے اور اس لحاظ سے اس وجہ سے اس کو عظیم ترین آیت کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ اس کی عظمت کی اور اس کی فضیلت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جس بے مثل انداز میں تذکرہ ہوا ہے سورت کے اندر اس کی نظیر قرآن پاک کی بھی کسی دوسری سورت کے اندر یا کسی آیت کے اندر یا کسی ڈسکورس کے اندر جو ہے وہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے اور اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے تو یہ جو تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ جو وحدانیت اور توحید جس طریقے سے بتائی ہوئی اور یہ توحید کا اس طریقے سے ایک منبع اور ایک جو ہے سورس کے طور پہ جو ہے یہ آیت موجود ہے اس کی وجہ سے اس آیت کی بہت عظیم آیت ہے اور اس کی فضیلت آئی ہے اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ وہ اس نے وہ زندگی کا منبع ہے وہ تمام کائنات کے اندر ہر چیز کو زندگی عطا کرنے والا ہے نہ وہ صرف خود قائم ہے بلکہ اس نے تمام کائنات کو تھام رکھا ہے اور ہر چیز کو تھام رکھا ہے اور اسی کی وجہ سے تمام کائنات میں چیزیں جو ہے ایز اٹ از جو ہے وہ قائم ہیں اور جہاں جہاں پہ جو فعل سر انجام دے رہی ہیں اس کی وجہ سے ہے وہ صرف پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے بلکہ وہ زندہ رکھنے والا بھی ہے اور پھر زندگی کی تدبیر کرنے والا بھی ہے اور وہ کبھی کسی لمحے میں پھر غافل نہیں ہوتا یوں تو سے یہ تمام ان یہ جو ڈیزم ہے اور یہ ایتھیزم ہے اور یہ الحاد اور ان سب چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے ایسے کہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے یا پھر کائنات کے وہ لوگ جو مانتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا لیکن پھر وہ ایرریلیونٹ ہو گیا اس کے بعد پھر وہ اس کو جو ہے اس نے چھوڑ دیا اور خود بخود چل رہی ہے تو ان تمام جو چیزیں ان کی نفی ہو جاتی ہے اور جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ خود انتظام کر رہا ہے اور کسی لمحے بھی غافل نہیں ہوتا اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اور اس کے اذن کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شخص بھی جو ہے وہ نہ کر سکے گا سفارش نہ کر سکے گا تو گویا قرآن پاک کے اندر کئی دوسری جگہوں کے اوپر سفارش کی مطلقاً نفی کی گئی ہے لیکن یہاں پہ جو ایکسپشن دی گئی ہے کہ ہوگی تو صحیح سفارش لیکن اللہ تعالیٰ کی اذن اور اجازت کے بغیر نہ ہوگا اس کے دربار میں کوئی بول نہ سکے گا تو یہ پھر جو ہے یہ تمام ان جو باطلا کنسپٹس ہیں شفاعت کے کہ فلان صاحب اور فلان صاحب اور فلان صاحب میری جو ہے وہ جو ہے مجھے ہاتھ پکڑ کے میرا جنت میں لے جائیں گے تو ان تمام قسم کے نظریات کی یہاں پہ جو ہے اس کے ذریعے سے نفی کی گئی ہے اور اسی وجہ سے یہ خالصتاً توحید کا سبق ہے اور اس وجہ سے یہ بہت خالص اور پیور ہے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے اور باقی ساری جو باتیں دوسری جو ہے چاہے شفاعت کے حوالے سے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ تصور کے حوالے سے لوگوں نے وابستہ کر رکھی ہیں ان کے کوئی بنیاد نہیں ہے دراصل یہی وہ چیز ہے جو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کروایا ہے اور اس کا علم لامحدود ہے اور اس کے علم کی کوئی مثال نہیں ہے اس لیے کہ تمام باقی مخلوق کا علم محدود ہے لہٰذا ہم کسی بھی لامحدود چیز کو محدود چیز سے جو ہے نسبت دے نہیں سکتے اور باقی یہ بھی اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ وہ فلاں جو ہے وہ جن یا مخلوق یا کوئی شخص یا اس طرح یہ غیب کی چیزیں اور وہ جانتا ہے وہ تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ ہی کو سارے کا سارا علم جو ہے وہ ہے اس کے علم کی مثال جو ہے وہ کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے تو اللہ اس طریقے سے آیت الکرسی توحید کے معارف کا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی پھر جو ذات کے اندر جو توحید ہے پھر توحید کے جو تقاضے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو تقاضے ہیں تو وہ ان کا ایک بیش بہا خزانہ ہے یہ और इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुख्तलिफ मौके के ऊपर मसलन हर नमाज के बाद पढ़ने की तलकीन फरमाई है, और फिर रात को सोते वक्त जो है पढ़ने की तलकीन फरमाई है, और फिर अगर इस तरीके से जहां भी कहीं भी पढ़ा जाए तो फिर शयातीन जो है वो इसके अंदर दखल नहीं दे सकते चीजों को, जैसे अगर आपने रात को पढ़ी है मसलन सोने से पहले। फिर एक उसूली बात जो है वो बयान की गई है, फरमाया कि इस्लाम के अंदर कोई जबर जबर नहीं है, ला इकराहा फिर दीन, यानी किसी शख्स के ऊपर किसी शख्स को जबरन इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं किया जा सकता और इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता। ये खुद इस्लाम की तालीमात है, बजाय इसके कि लोग जो है वो दूसरे इसके इस्लाम के बारे में इस तरह का प्रोपेगेंडा करें, और बल्कि करते हैं, अभी भी करते हैं। और इस्लाम के ऊपर जो सबसे बड़ा जो मुस्तशरिकीन ने ओरिएंटलिस्ट ने इस्लाम के ऊपर जो हमला किया है, जो एक उनके लिहाज से एक फिक्री जलगार जो उन्होंने की है पिछले कई सौ बरस के अंदर, और वो अब आके इस इल्म की बिल्कुल लाइम लाइट के अंदर आके अब वो तूफान थमा है। और खुद मगरब के अंदर से बेशुमार लोग ऐसे उठे उन्होंने, जिन्होंने कहा कि इस्लाम जबरदस्ती किसी तरीके से इस्लाम मुसलमानों ने कहीं भी जो है वो जबरदस्ती का मामला नहीं किया, गोया इस्लाम तलवार के जरिए से नहीं फैला। तो ये खुद इस्लाम की अपनी तालीमात है। और फिर लेकिन उसके बरक्स का मामला जो है वो भी जान लेना चाहिए कि अगर कुछ ये शख्स समझता है कि इस्लाम तो आता ही दरअसल जुल्म को मिटाने के लिए और इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए, और इंसानों को उसका जो इस्तेसाल हो रहा है दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में वो इस्तेसाल मिटाने के लिए ही तो इस्लाम जो है आया था। तो अगर जुल्म और इंसानों के ऊपर इस्तेसाल पे मबनी कोई निजाम या कोई कुव्वत अगर मौजूद है तो उसके खिलाफ भी अगर कोई समझता है कि ताकत का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, बल्कि जो है वो, और वो जबर भी नहीं है, वो जबर के जुमरे में भी नहीं आएगा, बल्कि वो लोगों को और अल्लाह ताला की मखलूक को जुल्म से और इस्तेसाल से और एक्सप्लाइटेशन से निजात दिलाने के लिए कुव्वत का इस्तेमाल बाज़ औक़ात नागुजीर हो जाता है और वो करना जरूरी होता है फितने को सरकोबी के लिए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद का वाक्या है कि नमरूद एक खुदाई दावेदार था, जो इराक का एक बहुत बड़ा इलाके के ऊपर एक बादशाह था जो है नमरूद। तो उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत जो है वो पहुंचाई, तो फिर उसने जो है मकालमा किया कि तुम्हारा रब कौन है। तो उन्होंने कहा कि मेरा रब वो है जो 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 जिंदगी अता करता है, जो मौत अता करता है। तो उसने एक शख्स को बुलाकर जेल से दो शख्स जो है बुलवाए कैदी, और एक को मार दिया और एक को जिंदा छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये तो मैं भी करता हूँ, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है और मगरब में गुरूब करता है, अब तुम इसके उल्ट करके दिखाओ। तो ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है जो जिस जो इस्तेमाल किया जो ये जो आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल किया, तो फिर ऐसा जवाब जो है जाहिर है अब किसी कायनात के किसी हिस्से के अंदर किसी शख्स का कोई इतना तसरफ नहीं है कि वो कायनाती चीजों को और फिर जो अजरामे फलकी हैं उनके ऊपर अपना जो असर दिखा सके, तो वो बिल्कुल लाजवाब हो गया और चारों चाने चित हो गया। और कुरान ने तो फरमाया कि फबोहतल्लज़ी कफर, वो जो 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 कुफ काफिर वो फिर जो है मबहूत होकर रह गया कि उसके पास कोई जवाब ना बन पाया। तो फिर उसने जो है फैसला किया कि ये जो शख्स है ये जो इस तरीके की बात करता है, एक खुदा की तरफ दावत देता है, इसको आग में डाल दिया जाए। तो फिर यहाँ पे जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाहिर अपने रब, वो एक अकेले शख्स जो है वो पूरे कुफ्र के अंधार तो अंधेरों के अंदर एक शख्स जो है वो तौहीद की दावत और तौहीद का दिया जलाए जलाने वाला, वो जो है वो एक ही अकेला अपनी अल्लाह ताला की जात का सहारा लेने वाला और अल्लाह ताला को अपने वली और कारसाज बनाने वाला। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने तीन मिसालें जो है वो दी हैं के ईमान वाले जो है अगर वो अल्लाह को अपना वली अपना कारसाज बनाए अपना मददगार मदद के लिए पुकारे, तो एक तो ये मकाम है। फिर नमरूद का जो है जो वाक्य आया है, तो फिर उसने नमरूद ने इस वाक्य के अंदर ये जो उनका मुकालमा हुआ मुबायसा हुआ मुजादला हुआ बिल्कुल ओपनली लोगों के सामने, और जिसमें वो शिकस्त खा गया, तो अपनी शिकस्त के लिए बदले के उसने आग में जो है वो फेंकना चाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो फिर उसने जो जो बात थी जो जो आर्गुमेंट था हजरत इब्राहिम सलाम का, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی اور انکار کر دیا. تو اس نے اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے پھر شیطان کو اور جو ہے کفر کو اور شیطان کو اپنا ولی جو ہے وہ بنایا, اور اللہ تعالیٰ کی ولایت میں جو ہے وہ آنے سے انکار کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا جو ہے مددگار, اپنا ولی, اپنا کارساز, اپنے رب کو بنایا, تو اس کے رب نے پھر اس کو چھوڑا نہیں, بلکہ اس کے رب نے اس کو جو ہے وہ آگ کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ مدد فرمائی اور آگ سے محفوظ رکھا. پھر دوسرا واقعہ جو آتا ہے وہ ایک شخص کا ہے جو ایک بستی سے گزرا پڑا تھا, گزرا اور وہ بستی بالکل تباہ و حال پڑی تھی, اور تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ شخص عزیر علیہ السلام سے, تو اس کے دل میں آیا کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بستی کو زندہ کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی, اور پھر 100 سال کے بعد اسے اٹھایا, اسے کہا کہ دیکھو اپنے گدھے کی طرف, جس کی ہڈیاں جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. تو یکا یک پھر ہڈیوں سے جو ہے ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا, اور پھر اسی طرح اس کا پورا زندہ ہو گیا گدھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اپنا اپنے اپنے جو ہے کھانے کو دیکھو جو ابھی تک اسی طرح اس برتن کے اندر گرم ہے. تو جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر عزیر علیہ السلام کی دل کی تسلی کے لیے اور شرع صدر کے لیے جو ہے یقین, اس کی بے پناہ یقین بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ ایک محیر العقل اور جو ہے وہ بالکل خارق العادت واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے کر دکھایا, تاکہ ایمان والوں کی وہ اس طریقے سے مدد کرے, اور ایمان والے اس طریقے سے جو ہے شرع صدر اور اطمینان قلب سے کی قوت سے جو ہے وہ حاصل کرے. اور تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا پھر ہے, وہی انہی کا پھر واقعہ آتا ہے جب انہوں نے بھی جو ہے اس قلب اس شرع صدر اور اطمینان میں قلب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ تو کیسے جو ہے وہ موت اور پھر ان کو زندہ کرے گا جو 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 مردہ ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جو یہ پرندوں والا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اسے کہا کہ یہ پرندے تم مانوس کرو اور پھر ان کو ذبح کرو اور پھر ان کو جو ہے مختلف پہاڑوں پہ ان کو جو ہے وہ پھینک دو, ان کے گوشت کے ٹکڑے, اور بلاؤ تو کس طریقے سے اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کو بھی انہیں شرع صدر اور اطمینان قلب کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا, اور اس خود عملی تجربے سے حق الیقین سے اللہ تعالیٰ نے گزارا کہ تم خود دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اور جو اس کو ولی اپنا کارساز بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انہیں یہ قلب اطمینان قلب کی دولت اور ایمان کی دولت اور شرع صدر کی کیفیت عطا فرماتا ہے. پھر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے, اور مسلسل بار بار ریپیٹیشن ہے اس کی. دو چیزیں ایسی ہیں جس کی اس صورت کے اندر پھر مسلسل جو ہے ریپیٹیڈلی جو ہے اس کا ذکر آتا ہے, ایک انفاق فی سبیل اللہ اور پھر جہاد فی سبیل اللہ. اور یہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بھی آئی ہے اور پھر اس کے آداب بھی ساتھ بتائے گئے کہ جس خلوص اور جذبے کے ساتھ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا, پھر اسی حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ واپس لوٹائے گا. اور پھر اس کے آداب میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں عمدہ مال خرچ کرو, بالکل ردی, اور بالکل جو چیز آپ کی ضرورت سے بچ گئی ہے اور بالکل فالتو ہے اور آپ کے استعمال میں نہیں ہو رہی ہے, اور اب آپ جو ہے اگر وہ چاہیں کہ اس کو جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں, اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عمدہ مال دو. اور پھر یہ کہ احسان نہ جتلاؤ کہ جو جس کو دے رہے ہو اس کو جو ہے کوئی بات نہ کہو, اور پھر جو ہے ریا نہ کرو اور دکھاوا نہ کرو. ان چیز سب چیزوں سے صدقہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. یہ اس کے بعد پھر آپ یاد رہنا چاہیے کہ یہ سارے احکام کہاں پہ نازل ہو رہے ہیں. یہ سارے احکام نازل ہو رہے ہیں جب ایک اسلامی نظام زندگی, ایک طرز حیات, ایک رہنے سہنے کا مکمل ایک جو نظام ہے اسلام کا, اس کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے, اس کی جو ہے اس کی بنیادیں اٹھائی جا رہی ہیں. تو اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہے ساری بجک وقت چل رہی ہیں, ایک ہی صفحے کے اوپر مختلف قسم کے احکامات ہوتے ہیں. ساتھ ہی یہاں پہ پھر سود, ربا یعنی انٹرسٹ, اور قرض یعنی جو ڈیٹس اور جو لونز ہیں وہ, اور پھر رہن جو مارگیج ہے اس کی جو ہے ان کا بیان ہے, اور سود کی حرمت کا بیان ہے یہاں پہ. اور اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پہ یہاں پہ جو سود ہے یہ قطعی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سود کو حرام قرار دے دیا یہاں پہ, اور جو ہے فرمایا کہ سود خوروں کی اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ سود خوروں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دوزخ میں جانے والے ہیں. تو یہاں پہ اور یہ جو ہے یہ باتیں جان لینی چاہیے کہ سود क्यों इतना ज्यादा शिद्दत से इसकी जो है मजम्मत की गई है। और वजह यह है कि जब तक आप उस बड़ी पिक्चर के अंदर आप इन अहकामात को राख कर न देखेंगे, इनफरादी तौर पर आप इनको जो है इनकी हिकमत पे गौर न करेंगे, तो इनकी जो है इन अहकामात की हिकमतें समझ ना आएंगी। मसलन बड़े एक बड़ी जो पिक्चर है, जो इस्लामी जो निजाम सोसाइटी बुनियाद जिसकी डाली जा रही है, और जिस समाजी और मुआशी अदल की इस्लाम जो जो इस्लाम कायम करने जा रहा है, उसका उसके अंदर सूद तो सबसे बड़ी रुकावट है। सूद तो उसकी जड़ें काटने वाला है, इस्लामी समाजी और मुआशी अदल की जो कायम करने जा रहा है। इससे इंसानी मोहब्बत जो है ये बिल्कुल इसको काट देता है, इंसानी हमदर्दी और खुवत की जड़ों को जो जो है ये बिल्कुल काट के रख देता है। और इस वजह से सूद की बड़ी शदीद मजम्मत की गई है कि सूद जो है मुआशरे के अंदर बामी अखुव्वत और बामी मोहब्बत और भाईचारगी के माहौल को की कैंची है। इसके को तो किसी सूरत के अंदर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता एक इस्लामी निजामे मुआशरत के अंदर। इस वजह से बड़े शदीद अहकाम जो है इसके आए हैं, और इस तरह के अल्फाज किसी दूसरे गुनाह के बारे में नहीं आए। दूसरे गुनाहों की एक गुना बता दिया गया है कि फलां का गुना ये होगा और फलां का ये होगा, और इसके बारे में कहा तो ये जो सूद खोर है ये तो फिर ऐसे ही है जैसे ये अपनी फौजें लेके जो है खड़े हैं, और उसके मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल की फौजें खड़ी हैं, और ये अल्लाह उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। ये अल्फाज हैं कुरान के कि ये अल्लाह उसके रसूल से फिर जंग है इनकी। तो आप अंदाजा कीजिए कि इसकी शिद्दत का मामला देखें कि इसकी जो, और इसी तरह हदीस मुबारका के अंदर इसकी बड़ी शदीद मजम्मत, और ऐसे अल्फाज आए कि किसी दूसरे गुनाह के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं है। तो इसीलिए मेरे अजीज भाइयों, इस निजाम को, इस्लाम के उस निजाम को समझने की जरूरत है जो वो मुआशरे में कायम करना चाहता है, जो वो मुआशरे में जिस समाजी और मुआशी अदल को और सोशल जस्टिस को देखना चाहता है, उस सोशल जस्टिस के रास्ते में जितने हर्डल्स हैं और जितनी रुकावटें हैं, उन सब को इस्लाम ने जो है वो नफी की है। फिर इससे पहले भी हम पढ़ते रहे कि जुए की, और ये जो इजी मनी है, और मनी का जो बिल्कुल मेहनत के बगैर एक तरफ, मनी का जो है बिल्कुल अचानक बेपहा बहाव चले चले जाना एक तरफ, और इस तरह के जितने भी सोर्सेज होंगे और इस तरह के ममासिल जितना के जो है वो मनी की ट्रांजेक्शन होगी, वो सारी की सारी फिर जो है कलअदम करार दे दी गई इस्लाम के अंदर। फिर इसी तरह इसी समाजी और मुआशी अदल के क्याम में एक और हुक्म का इजाफा किया गया, और वो कहा गया कि जाहिर है लोगों की ट्रांजेक्शन होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, लोगों के मामलात होते हैं एक दूसरे से, कर्ज और तजारती लेन देन होते हैं। तो फरमाया कि ये कर्ज और लेन देन के जो तुम्हारे मामलात हैं, जो ट्रेड अग्रीमेंट है, इनको तुम लिख लिया करो। अब देख लें कि बड़े बड़े वेरी प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर अभी कोई लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, तो इस्लाम ने इसकी जो है हौसला अफजाई की है। एक जो है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की जो है हौसला अफजाई की है, कहा कि तुम इसको लिख लिया करो, और फिर ये भी नहीं, इसको मजीद जो है वो इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए मजीद कहा कि इस पर गवाह बना लिया करो, ये मजीद डॉक्यूमेंटेशन है ताकि तुम्हारे जो है, ये आपको पता है कि इंसानी मुआशरों के अंदर जो जो पैसा और माल है, इसकी बुनियाद पर बहुत सारे जो है बिगाड़ पैदा होता है, और लोग और भाई भाई एक भाई दूसरे से और अपने अजीज रिश्तेदार एक दूसरे से, इसकी वजह से जो है वो कट जाते हैं। लेकिन इस्लाम इसमें बिल्कुल अपराइट और बिल्कुल दो और दो चार की तरह वाजे तौर पर हिदायत देता है, और फिर इस मामले को बिल्कुल साफ रखने की जो है वो बात करता है। और फिर जब मॉर्गेज की बात की गई तो फरमाया कि इसकी इजाजत है कि तुम अगर कोई शख्स सफर में मसलन है और उसके पास कोई चीज है और उसको सहूलत उसको पैसे दरकार हैं, या उसकी कोई दूसरी जरूरत है, तो वो अपनी कोई भी चीज अपनी बतौर जमानत और सिक्योरिटी रख के जो है वो बारो कर सकता है। कोई भी चीज अपनी जरूरत की, चाहे पैसे हैं, चाहे माल है, या वो अपनी कम्युनिटी की जो चीज करना चाहता है वो बारो कर सकता है। तो इसमें कहा गया कि तुम सहूलत दो उसको, और फिर साथ फरमाया कि ये सहूलत तकवा के साथ होनी चाहिए, यानी जान रखो कि तुमने कोई चीज रहन में रखी है, उससे लिए बतौर जमानत, लेकिन जब वो शख्स जो है वो चीज वापस अपनी लेके आएगा, तुम्हारी अपनी अमानत, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे जो चीज उसने बारो की है तुम लेके आएगा, तो तुम अल्लाह ताला का खौफ और अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करते हुए कि मेरे ऊपर कोई ना कोई मुहतसिब मौजूद है जो मुझसे इसका हिसाब लेगा, उसको बिल्कुल मामला बिल्कुल साफ और वाजे और खरा, और जो इसी तरीके से उसको लौटा दो चीजें वापस। फिर इसके बाद फिर इन्फाक का हुक्म आ गया, जैसे मैंने कहा कि ये फिर तो उसलूब बदलते रहते हैं, कहीं पे हुक्म है और कहीं पे तरगीब है और कहीं पे तशवीक है, कहीं पे शौक दिलाया गया। यहाँ पे तरगीब के अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह ताला की खुशनुदी में खर्च करेगा, यानी उसकी फिर मिसाल दी कि जैसे एक जो है दाने से एक बाली निकली और हर बाली में 7 दाने हैं, एक 7 खोशे हैं और हर खोशे के अंदर फिर 7 खोशे हैं और 7 खोशों के में से हर खोशे के अंदर 100 उसमें दाने हैं, तो इस तरीके से तो कुल 700 दाने बन गए एक दाने से, तो अल्लाह ताला इस तरीके से बढ़ोतरी करता है। तो ये गोया एक कोई भी जो अजर है उसका 700 गुना, लेकिन ये अजर जो है जो 700 गुना बताया गया है, इसके बारे में भी मुफस्सरीन और उलमा ने लिखा है कि ये तमसीलन है, असल तो वे जो है इस पे बहुत ज्यादा, इससे अल्लाह ताला चाहे तो जो है वो अल्लाह ताला इससे कहीं ज्यादा अता करने वाला है और वो दे सकता है। फिर सूरत के खिताम पर, ये सूरत खिताम को पहुंचती है, तवील सूरत है, एक अजीम दुआ के ऊपर ये खत्म होती है, और जिसमें इस दुआ की भी बड़ी तरगीब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप मेराज पे तशरीफ ले गए तो फरमाया कि मुझे अर्श के खजानों के नीचे जो है ये दो आखिरी आयात जो है 285 और 286, ये वहां पे अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई, और एक अजीम दुआ है, और इसमें बताया गया कि हर शख्स के यहाँ जो है वो इनफरादी तौर पर अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह होगा, और अच्छे अमल की जो है वो जजा मिलेगी और बुरे अमल की जो है वो सजा मिलेगी, लेकिन अगर किसी से नसियान और भूल चूक हो गई है तो उस पर मुआवजा ना होगा, किसी का बोझ दूसरे के ऊपर ना लादा जाएगा। ये जो इनहेरिट जो सिन का तसव्वुर है सैयद के अंदर, उसकी नफी की गई है कि ऐसा नहीं है कि बुनियादी तौर पर हर शख्स पैदाशी तौर पर जो है गुनाहगार पैदा होता है, बल्कि इस्लाम के अंदर हर पैदाशी पर बच्चा पैदा होने वाला जो है वो गुनाहों से पाक पैदा होता है, और फिर उसमें जिंदगी के अंदर जो भी जो वो करता है चीजें अपनाता है उसी की बुनियाद पे उसकी जजा और सजा होगी। फिर आजमाइशों से बचते रहने की दुआ करते रहना चाहिए, बच गया, और कुफार के मुकाबले में अल्लाह ताला से मदद और नुसरत की इस्तदा करने की जो है वो की गई है, ताकीद की गई है, और फरमाया कि अल्लाह को अपना मौला और कारसाज बनाओ और उसी से ताल्लुक उस्तवार करो, और उससे ताल्लुक उस्तवार करने के लिए उसी से दुआएं मांगो, उसी से मगफरत मांगो, उसी से अफ़ुव दरगुज़र और रहमत जो है वो मांगते रहो। ये जो है सूरह बकरा के मज़ामीन थे, और उसके फौरन बाद फिर सूरह अल इमरान जो है वो शुरू होती है, ये सूरह अल बकरा का जोड़ा है, पेयर है। और अहदीस के अंदर जैसे हम पढ़ा है सूरह बकरा के आगाज के अंदर, इसकी भी इसी तरह जो है वो फजीलत आई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो सूरतों को ग़मामतान फरमाया, यानी दो बादलों की सूरतों के अंदर या दो परिंदों के झुंड की सूरत के अंदर ये हशर के मैदान में आएंगी और अपने पढ़ने वालों और अपने जो 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 इनके अजीज रखते हैं उनके बारे में जो है अल्लाह ताला से मुजादला करेंगी और अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगी कि अल्लाह ताला उनकी सिफारिश जो है वो कबूल फरमाए, क्योंकि जो तो पढ़ने वाले हुआ करते थे। ये सूरत गजवे उहद के बाद नाजिल होना जो है वो शुरू हुई, और जो 2 हिजरी के बाद यानी नाजिल गजवे उहद जो है जब हो चुका, तो फिर इस पे गजवे उहद के ऊपर इस सूरत के अंदर तफसीली तबसरा मौजूद है। इस सूरत के आप मजामीन को अगर आप उसकी एक बड़ी तकसीम करें तो उसके दो जो है वो हिस्से बनते हैं। पहला निस्फ जो है वो कुल आयात जो है सूरत की 200 है, तो पहली 100 आयात 101 आयात के अंदर अहले किताब से खिताब है, और दूसरी हिस्से के अंदर 99 आयात के अंदर उम्मत मुस्लिमा को खिताब है। अगर अब हम कंपेयर करें सूरह अल बकरा से, तो आपको याद होगा कि सूरह बकरा के अंदर भी पहला जो हिस्सा था उस सूरत का बड़ा हिस्सा जो था वो अहले किताब और खसूसन यहूद को जो है वो खिताब था, यहाँ पे अहले किताब को खिताब है और खसूसन ईसाइयों से नसारा से जो है वो खिताब है, और उस सूरह बकरा के अंदर दूसरे हिस्से के अंदर मुसलमानों को हिदायत थी, और यहाँ भी अब दूसरे हिस्से के अंदर जो है मुसलमानों को तफसीली हिदायत जो है वो बताई गई। इसके मरकजी मजामीन में अहले किताब को दावत दी गई है कि अब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल के तौर पर तशरीफ ले आए हैं, अब ये जो है जो 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 किताब है ये भी आखिरी किताब है, और ये आखिरी रसूल है, और ये आखिरी जो है वो दीन इस्लाम जो है वो आखिरी दीन के तौर पे आया है और तुम इसे अब जो है वो कबूल कर लो। फिर इनके बारे में फरमाया कि इनके अहले किताब के खैर से इस्तेफादा किया जाए कर लो, और इनके शर से जो है अपने आप को जो है वो महफूज रखो, और इनके शर से इज्तनाब का हुक्म जो है वो दिया गया, उनके बारे में अवेयरनेस और उनके बारे में खबरदार रहने की जो है वो बात बताई मुसलमानों को। फिर जो बड़ा हिस्सा है निफ्सानी जो है उसके अंदर फिर मुसलमानों को बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक और तंजीम की हिदायत दी गई, इसलिए कि मुसलमानों की तादाद अब ज्यादा होती जा रही थी, तो ऐसा ना हो कि मुसलमान एक भीड़ की सूरत तो हो जाएं लेकिन उनके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और तंजीम और नज्म जो है उसकी कमी हो, तो इसको बड़ा खसूसी तौर पे इसको जो है फोकस किया गया है। इस सूरत के चार खुतबे हैं। पहली 32 आयात के अंदर जो है जो खिताब है वो एक तमहीद के तौर पर तमहीदन नसारा को खिताब किया गया है, और फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में 32 से 64 आयात जो है उसमें उनको अहले किताब को खसूसी जो है खिताब डायरेक्ट बराह रास्त खिताब है, और फिर 65 से 99 आयात के अंदर निसारा और यहूद दोनों को मिक्स खिताब किया गया है, और फिर 100 से लेकर 101 से लेकर 200 आयात इस सूरत के खिताम तक अहले ईमान को खसूसी जो हिदायत है। फिर शुरू के अंदर ही इस सूरत के अंदर मोहकम आयात और मुतशाबे आयात के बारे में फरमाया कि वो आयात जो बिल्कुल अपने जो अपने मफहूम के एतबार से और मानी के एतबार से बिल्कुल वाजे और क्लियर हैं वो मोहकम है और उन पर अमल करो, और कोई ऐसी आयात जो है जिनके जिनके बारे में इंसान के अभी हवास खमसा से जिनको नहीं समझा जा सकता वो मुतशाबे आयात हैं, और उनकी खोज में और उनकी टो में अपना वक्त जाया मत करो, और ऐसा ना हो कि तुम फरमाया कि जिन लोगों के दिल में टेढ़ होता है तो वो इन चीजों के बारे में पूछते हैं कि बताएं अल्लाह ताला का अर्श कैसा है और उसकी नोयत क्या है, तो ये मुतशाबे आयात हैं, उनके बारे में जो है वक्त जाया करने की जो है वो ममानत की है ये है। फिर यहाँ पे इसके बाद चूंकि खिताब जो है पहले तमहीदन और फिर तफसीलन जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों को है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में और उनके जो हालात थे खासतौर पर उनकी उससे पहले वालदा फिर हजरत मरियम की वालदा की जो नजर थी कि अगर उनकी बेटी उनका बेटा पैदा हुआ तो वो फिर इस तरह हैकल की नजर करेंगी और हैकल की वो खिदमत करेगा, तो उनकी बेटी हुई तो फिर भी उन्होंने जो है वो उनकी हैकल की नजर कर दिया, और ये पहली खातून थी जो हैकल के अंदर जो है वो उनकी मुजावर और उनकी खिदमत करने वाली जो है वो बनी, और फिर उनकी विलादत का तज़किरा है और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत का तज़किरा है, और फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम का उनकी नेक औलाद के लिए दुआ मांगने का तज़किरा है, और जो है सारे तफसीलन जो है वाकयात बताए गए, और इन वाकयात में बताना ये मकसूद है कि ईसाइयों को बताना मकसूद है कि देखो जिन्हें तुम खुदा कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम तो उनकी वालदा और उनके उनके जो खालू हजरत जकरिया और ये लोग तो ये इस सिलसिले के लोग थे, ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला था उसी सिलसिले के लोग थे, इन इन मुश्किलात से ये लोग गुजरे, और खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा और उनके फिर हवारी थे जिस तरह उन्होंने खुद मदद के लिए पुकारा हवारियों को, और फिर हवारी आ गया उनकी मदद के लिए आए, और फिर उन्होंने जो तबलीग की और फिर तबलीग के लिए उन्हें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहूद को जिन जो है वो यहूद की रिश्ते दवानियों का सामना करना पड़ा और यहूद के उलमा की तरफ से जो उनको मुखालफत और जो जो उनको एक टफ टाइम दिया गया, ये सारे का सारा था कि ये कैसे फिर खुदा हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल आम इंसानों की तरह इंसान थे और अल्लाह ताला के रसूल थे, और फिर इस तरीके से देखो कि उनको भी जो है मामला उनके साथ भी ये हुआ कि उनके खिलाफ भी साजिश की गई, उनको मारने की उन यहूद ने कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल आखिर वक्त में फिर उन्हें जिंदा उठा लिया, और इस तरीके से ईसाइयों के गलत अकायद और नजरियात की जो है वो तरदीद की गई, रिफ्यूट किया गया है, और बड़े जबरदस्त दलायल जो है वो इस हिस्से के अंदर दिए गए हैं। और फिर जब ईसाइयों का वफद आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस मामले पे गुफ्तगू करने के लिए, तो ये मुख्तलिफ आयात जो उतरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इन आयात की तिलावत फरमाई और यही बातें उनके यहाँ उनके गोश गुजार की जो जो कुरान पाक में यहाँ पे इस मकाम के ऊपर जो उतरी हैं। तो फिर इसके बाद भी उस जो है जो ईसाइयों का जो डेलीगेशन था जो आया था नबी सल्लम के पास मामला बात करने के लिए तो उन्होंने ना मान के दिया, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आओ फिर जो है मुबाहला जो है वो कर लेते हैं, कि जो है हम मुबाहला ये होता था कि किसी हक के जो है वो बात को उसको साबित करने के लिए, फिर एक बात पे जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि जो शख्स भी इस मामले में जो है वो हक को जानते हुए हक को कबूल ना नहीं कर रहा तो अल्लाह ताला उसे नीस्त तो नाबूद कर दे। तो ये फिर इस तरह का जो है जो मुबाहले की जब बात आई तो फिर उन्होंने आपस में मशवरा करके मुबाहले से इतराज किया कि उनको उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत का और फिर नबी सल्लम के रसूल होने का बिल्कुल यकीन था, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसको मान के ना दिया। और फिर आखिर में जो है वो बात जो बताई गई है कि अल्लाह ताला के नजदीक याद रखो कि दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इससे पहले वाले सिलसिलों के अंदर भी अम्बिया अलैहिस्सलाम को जो भेजता रहा है वो भी दीन इस्लाम ही था, और अब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रिसालत की तजदीद और नई रिसालत जो है अपने लेके जो आए हैं, जिसके ऐलान किया है जो सिलसिला रिसालत और नबुव्वत का आखिरी कड़ी के तौर पे जो अब आए हैं, ये भी वही इस्लाम है। अल्लाह ताला के नजदीक जो है कोई और चीज काबिले कबूल नहीं होगी अगर इस्लाम के अलावा, इसके इस निजाम हयात के अलावा कोई और निजाम तुम कबूल करोगे तो वो अल्लाह के यहाँ किसी सूरत में काबिले कबूल नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमन यबतगी गैर इस्लामी दीना युकबलु मिन्हु, जो भी शख्स कोई और इस्लाम के अलावा कोई बात करेगा, कोई और निजाम को कबूल करेगा, कोई और चीज लेके आएगा, अल्लाह ताला के यहाँ वो काबिले कबूल बिल्कुल ना होगी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अजीम व नफानी व इय्याकुम बिमा फीही मिनल आयात व ज़िक्रिल हकीम फस्तगफिरूहु इन्नहु वल गफूरुर रहीम।